शांति। कल भी दादी जी के निमित्त सारा ही हॉल भरा हुआ था, परंतु अभी भी कोई कम नहीं लग रहा। अभी भी लग रहा है कि सारा ही हॉल की शोभा बढ़ी हुई है। मैं देखती हूं कि गायन जो भक्ति में है कि दिन रात गंगा का पानी बहता रहे और लोग उसमें नहाते रहे, उसी में ही आनंद आता। तो मधुबन की ये विशेषता है, सवेरे से रात्रि तक ज्ञान गंगा बहती रहती है। सवेरे तो सागर में नहाते हैं, फिर दिन भर नदियों में नहाते हैं, तो भी सोचते हैं कि इनफ नहीं है, और भी खजाना हमें मिले तो और ही हमारे दिल के अंदर वो शक्तिशाली स्थिति ऐसे बनी रहे जो हम बाहर जाकर के फिर वहां के वातावरण में भी कुछ फर्क करें, कुछ परिवर्तन करें, राइट? तो आज की टॉपिक है समय अनुसार। क्यों? क्योंकि भारत में भी इस बात की जानकारी होंगी, परंतु विदेश में तो इस बात का बहुत ही आजकल चर्चा चल रही है। और जो विदेश की हवा है आगे पीछे भारत में पहुंची जाती है, परंतु उस चार बातों के कारण विदेश में परिस्थितियां बढ़ती जा रही है। तो उसका मैं शॉर्ट में पहले वर्णन करती हूं। एक तो इंग्लैंड में और अमेरिका में कहते हैं कि 16 वर्ष से लेकर इकोनॉमिक बूम, जिसका भारत में भी बहुत फायदा हुआ है, यहाँ पर भी 10-15 वर्ष में कहेंगे कि भौतिकवादी हिसाब से डेवलपमेंट, प्रगति बहुत ही हुई है। तो इंग्लैंड में भी बता रहे थे 16 इयर्स लगातार वो इकोनॉमिक बूम चला है, अभी अचानक ही रिसेशन शुरू हो गई है अथवा पैसे की खींचतान शुरू हो गई है। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुई अमेरिका में, उसका असर आया यूके और यूरोप में, और कुछ समय के अंदर जरूर भारत तक भी पहुंचेगा। तो जो अभी तक समझते थे कि हाँ बस आराम से जीवन बिताओ, खाओ पियो मौज करो, जो चाहिए सो खरीद करो, अभी उनको ऐसे लगेगा कि कुछ ऐसे संसार की गतियां हैं जो इस तरह से संसार चल नहीं सकता। मटेरियलिज्म का भी आकर के अंत पहुंचा है। तो विदेश में तो आजकल इस बात को स्वीकार कर ही रहे हैं, भारत में भी मैं समझती कुछ समय के अंदर ये स्वीकार करना ही होगा। वैसे तो 3 साल के बच्चे को भी यही होता कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, परंतु और तृष्णाएं तो वो बढ़ती जाती है, कभी कोई खत्म होने वाली नहीं है। तो यदि उस बात की हम परिस्थिति को देखते हैं कि मटेरियलिज्म की हालत क्या है, तो उससे कोई संसार सुधरने वाला नहीं है। बाबा ने ये तो बता दिया है कि और ही मुश्किलें आती रहेंगी। दूसरा, फिर संसार में आजकल ये बात बहुत प्रसिद्ध चल रही है जिसमें कहते हैं क्लाइमेट चेंज अथवा एनवायरमेंटल इफेक्ट। उसमें भी फिर कहते हैं कि जो अमीर देश है उन्होंने तो खूब मौज मना लिया, जितना उनको सब कुछ करना था इंडस्ट्री में वो करते गए, अभी इंडिया और चाइना कुछ अपने को रिस्ट्रेन करे। तो इंडिया चाइना फिर कहती है कि आप लोगों ने तो मौज ले लिया, हम क्यों अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखें। परंतु एक ही घर है, जब धुआं एक स्थान पर फैलता एक कमरे में नहीं रुकता, परंतु वो धुआं सारे घर में फैल जाता। तो ये आज हम नहीं कह सकते हैं कि ये अमेरिका का दोष या इंग्लैंड का दोष, परंतु इंडिया और चाइना का दोष नहीं है। दोषित कुछ भी हो, परंतु रियलिटी तो सारे विश्व पर ऐसे अफेक्ट आ रहा है जो सारा हम देखते हैं कि क्लाइमेट पर कितना उसका असर होता रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में ये बातें नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं समझती कई लोग इन बातों को जानते हैं। सिर्फ उसमें मैं एक शब्द और कहेंगी कि 1993 में जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स चला था शिकागो में, तो उस समय मुझे ये सुनने को मिला था कि जो एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का इफेक्ट है, उसका क्लाइमेट पर असर होगा। उस समय लोग उस साइंटिस्ट को कहते थे ये तो पागल है, हवा में घूमने वाला है, परंतु जो उसने बताया कि 20 साल में बातें होंगी, 10 साल के अंदर होती गई, क्योंकि मानवता का जो मटेरियलिज्म का संस्कार है, बस इंडस्ट्री बढ़ाते जाओ, जो चीजें चाहिए लेते जाओ, धरती के ऊपर हिंसा करते चलो, ये सब बातें तो और ही फोर्स से चलती रही, तमो प्रधानता की ओर बढ़ते रहे। तो देखते हैं कि आगे चल करके संसार की हालत क्या होगी। पिछले सप्ताह में स्पेन में कॉन्फ्रेंस में थी, तो उसने, मैं आपको दो छोटी सी बातें बताती हूँ, परंतु वो भी अपने ब्राह्मण जीवन अनुसार हम तो बच के रहेंगे, परंतु संसार की हालत क्या है उसका मैं थोड़ा ये दो स्टेटिस्टिक्स से ही आपको बताती हूँ। बताते हैं कि यदि एक व्यक्ति आधा किलो अनाज खाता है, उसमें 25 गैलन पानी लगता है उस आधा किलो अनाज को उगाड़ने के लिए, और यदि आधा किलो मीट डाइट होती है, अशुद्ध जो नॉन वेजिटेरियन खाना होता, उसमें 2500 गैलन का पानी लगता, क्योंकि पानी पहले दियो अनाज को, अनाज को बड़ा कराओ, फिर जानवर को दियो, फिर जानवर को काटो, आदाद आदाद। तो उसमें 25 गैलन पानी और उसमें 2500 गैलन पानी। तो उसमें बताते हैं कि यदि विश्व में मीट डाइट चलता रहेगा सारे विश्व के लिए, तो 15 साल के अंदर जो भी अपना सारा पानी है, ताजा पानी, वो खत्म हो जाएगा। और यदि सारा समाज वेजिटेरियन बन जाए, तो फिर तो 2060 साल तक पानी अपना चल सकेगा। तो ये तो परिस्थितियां संसार की ऐसी है जो बड़ी अजीब गरीब इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आजकल। तो हम तो कहेंगे कि न इकोनॉमिक क्राइसिस का अपने ऊपर असर होता, न कोई ये वेजिटेरियन बातों का हम लोग कोई ज्यादा सोचते हैं, परंतु फिर भी संसार की हालत क्या है मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताने चाहेंगी। तीसरी बात बताते हैं धर्म का युद्ध। उसमें या तो धर्म को बिल्कुल न मानने वाले हो गए हैं लोग। आज भी मैं समझती, एक मास पहले हमारा भाषण था ऑक्सफोर्ड टाउन हॉल में, उसमें हमारी इंटरव्यू एक बहुत होशियार बहन जो नजदीक के संपर्क वाली है, उसका टॉपिक था क्या भगवान की आवश्यकता है, इज गॉड नेसेसरी। तो उसमें आप सोचो कि इंटेलिजेंट लोग बैठे थे और आधे से अधिक लोग भगवान की क्या जरूरत है संसार में उस टॉपिक को लेकर के खड़े थे। और उसका मेन कारण एक यही बताते हैं कि हम इतिहास को देखते हैं तो धर्म से क्या फायदा हुआ, धर्म से और ही युद्ध चलती रही है, एक दूसरे के गले को काटने के लिए तैयार होती हैं, और ही अपने को ही सत्य समझते हैं, तो फिर और ही उसका नुकसान होता। तो भगवान शांति दाता है, भगवान शांति स्थापन करता, ये तो उन्हों के पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो भगवान के नाम पर युद्ध चल रही है अथवा धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा, तो ये धर्म का संकट, अति धर्म गिलाने का समय, ये भी परिस्थिति अभी हमारे सामने चलती जा रही है। चौथी बात जो मैं बताएंगी वो है परिवार की बात। क्यों? क्योंकि ये है चार पिलर्स अपने सारे संसार के, एक तो इकोनॉमी और दूसरा एनवायरनमेंट और तीसरा धर्म और चौथा फिर फैमिली। और फैमिली के हिसाब से भी इंग्लैंड की तो ये हालत है कि अधिक लोग अभी अपने सेकंड मैरिज में पहुंच गए हैं न कि फर्स्ट मैरिज में। आप सोचो कि इंग्लैंड की पॉपुलेशन 65 मिलियन है, उसमें से जो शादी किए हुए लोग हैं पहले वाले के साथ नहीं है, वो डिवोर्स होकर के सेकंड वाले के साथ अभी आ चुके हैं। उसमें भी लंदन की स्थिति क्या है, उसमें बताते हैं कि एक अकेला पेरेंट बच्चों को संभाल रहा है, मेजॉरिटी मींस बच्चे को माँ बाप दोनों की आवश्यकता है, परंतु ऐसे संबंध टूट फूट गए हैं जो आज ये हालत हो गई। परंतु विदेश की बात तो छोड़ो, भारत में कभी हमने नाम निशान नहीं सुना था डिवोर्स का। आजकल तो मैं समझती बहुत कम परिवार वाले होंगे जिनों के पास यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ कुछ सुनने को नहीं मिलता होगा। तो जो फैमिली सिस्टम का ब्रेकडाउन हो चुका है, उसमें भी जो इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी का स्थिरम, जो स्थिरम स्थिति होनी चाहिए अस्थिरम स्थिति हो गई है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ बिल्कुल स्थिरम, और दूसरी तरफ हम संसार की हालत को देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा। तो मेरा प्रश्न एक आता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा, और बाबा के बच्चे तो कहेंगे ये तो कलयुग है, ये तो अति धर्म गिलाने का समय है, ये तो तमो प्रधानता का समय है, इस कारण से ये सब कुछ हो रहा। राइट, ये आपकी बिल्कुल बातें राइट। परंतु बाबा ने हमें एक और बड़ी सिंपल गहरी बात बताई है, जहां सत्यता होती है वहां सिंप्लिसिटी होती, और जहां सिंप्लिसिटी है वहां उस बात को समझ करके चलना सहज होता। परंतु सिंप्लिसिटी में फिर ये एक नुकसान हो जाता, जो लोग समझते हैं दिस इज टू सिंपल, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो सिंपल बात क्या है, बाबा ने बताया है कि जो कुछ आत्मा के अंदर हो रहा वो ही हम बाहर उसकी रूप रेखा देख रहे हैं। दो शब्दों में इसको कह सकते हैं, इनसाइड आउट, अंदर के बाहर बाहर में नजर आ रही। कौन यहां बैठा है जो इस बात को स्वीकार करता है कि जो अपनी अंदर की बात है वो बाहर की रूपरेखा बनती? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, विचार कर रहे हैं शायद। अच्छा, मैं फिर से प्रश्न पूछती हूं, आप थोड़ा विचार करके फिर हाथ उठाना। कौन यहां समझता है कि अपने अंदर की स्थिति के कारण ही कि हम सब बाहर की बातें देख रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं तो पुराने ब्राह्मणों की सभा के साथ बात कर रही हूं, तो 100% सभी हाथ उठाएंगे, परंतु शायद कहीं थोड़ा भी संकोच कर रहे हैं, या शायद भाषा को ठीक समझा नहीं है, मैं समझती नहीं हूं। परंतु बाहर वाले इस बात को स्वीकार करें, उनों के लिए बहुत अभिमान की बात आती। अभिमान ये आता कि ये सब तो बाहर की बातें, हम लोगों ने थोड़ी ये सब पैदा की है। परंतु ब्राह्मणों ने इस बात के गुह्य रहस्य को समझा है, ज्ञान को समझा है कि परिस्थिति अपने आप पैदा नहीं होती, आत्मा ही हर्ता करता है। राइट, अपने आप तो कोई परिस्थिति नहीं आ गई ना, या कहेंगे कि ये तो तकदीर है, अपने आप ही सब कुछ हो गया। बाबा ने क्या बताया है, कर्म फिलॉसफी के हिसाब से, ड्रामा के ज्ञान के हिसाब से, जो बीज डाला है किस समय भी डाला हो, परंतु उसका फल अवश्य ही निकलेगा। मीठा फल चाहे कड़वा फल चाहे खट्टा फल, ऐसे ही अचानक मेरे हाथ में बहुत मीठा फल आ जाए और मैं कहूं कि बस ये तो ड्रामा अनुसार हो गया, ये तो बाबा कहेगा कि बच्चे थोड़ा विचार करो, थोड़ा इस बात के गहराई से समझो। तो कर्म फिलॉसफी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे सामने, उसका कारण है आत्मा। आत्मा ने जो कुछ किया है इस जन्म में चाहे पूर्व जन्म में, उसके हिसाब अनुसार ही हम चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, चाहे एनवायरमेंटल क्राइसिस देख रहे हैं, चाहे फैमिली क्राइसिस या धर्म की संकट देख रहे हैं। अच्छा, ये चलो हो गई बाहर की भाषा की बातें। बाबा ने और उस बात को सिंपल करके हमें ये स्पष्ट किया है, अच्छा चलो आपको इकोनॉमिक्स का नहीं सोचना है, एनवायरमेंट का नहीं सोचना है, छोड़ दो वो बातें, भूल जाओ। परंतु बाबा ने और सिंपल करके बताया है, तन मन धन और संबंध, राइट, इन चार बातों के अंदर हमारी जीवन बीतती है और कोई पांचवी बातें नहीं आती। परंतु जो कुछ हो रहा है तन पर प्रभाव है, मन पर प्रभाव है, धन पर प्रभाव है, चाहे संबंध पर प्रभाव है। तो उसका आधार, अभी तन हमारा बीमार हो गया, हाँ हम ये कहेंगे कि कुछ खाने पीने की परहेज हमने नहीं रखी, परंतु कई है मैंने देखा है बहुत अच्छी तरह से खाने पीने की परहेज रखते हैं, परंतु कुछ न कुछ अचानक ही हो जाता। और आज का संसार तो ऐसे है, रियलिटी में कुछ मालूम नहीं पड़ता, आज सब कुछ ठीक है, कल छोटा सा नुक्स आ गया, बस वो छोटी सी बात आ गई और पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा। तो तन की जो संकट की बातें आई, भगवान ने ये नहीं कहा कि बस इसके ऊपर संकट आना चाहिए, या ड्रामा ने अचानक ये नहीं कहा कि इसको बीमार कर दो, या किसी ने जादू मंत्र नहीं फेरा। परंतु किस जन्म का किस हिसाब किताब का समय अब चुकतु करने पर आया है, बाबा कहते हैं कि आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जो भी बात आई है चलो खुशी खुशी से प्यार से चुकतु करते चलो, तो वो चुकतु हो ही जाएगा और आत्मा आगे बढ़ती चली जाएंगी। परंतु तन की परिस्थिति के कारण हमारे मन की स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ा, तो वो हिसाब किताब चुकतु नहीं हुआ और ही वो हिसाब किताब हमारा बढ़ता चला गया। मानो कि आज तन बीमार है और मन मेरा उसमें किसी और को दोषी बनाता कि देखो उसने मेरी ठीक संभाल नहीं की, या और हम दोषी बनाते हैं कि देखो किसकी मेरे लिए परवाह ही नहीं है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, उनको इतना तक तो ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो हमारे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ तो क्या नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो उस बीच में एक तरफ तो दुख आया भोगना के लिए, वो कर्म हिसाब किताब आया, परंतु वो हमने चुकतु नहीं किया, वो हमने और ही उस बात को बढ़ा लिया। तो बीमारी भी लंबा समय तक चलेंगी और हिसाब किताब भी कोई चुकतू नहीं होगा। और अपने पास न सिर्फ बाबा मम्मा दादियों का एग्जाम्पल है, परंतु आप सभी ने कई अपने ही समान भाई बहनों को देखा होगा कि कैसे कोई हंसते हंसते हिसाब किताब चुकतू करते, सेवा करते, बस बाबा की गोद में विश्रामित होते। दादियों के तो एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने है ही, चाहे बड़ी दादी है, चाहे दादी गुलजार है, चाहे दादी जानकी है, कि तन कैसे भी हो परंतु मन की स्थिति के द्वारा फास्ट हिसाब किताब चुकतू। परंतु मैं दो विदेशी भाई बहनों की कहानी सुनाती हूँ। जिन्होंने अपनी स्थिति द्वारा किस तरह से और ही सबकी सेवाएं की। एक थी बहन और वो करीब 15 साल से ज्ञान में थी और उसकी आयु थी उस समय 40 वर्ष। टीचर, लौकिक टीचर, अंग्रेज बहन। तो उसकी बीमारी जैसे बढ़ती गई, उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, तो उसमें हड्डियां चल नहीं पाती है, मतलब डिजेनरेटिव डिजीज, वो बढ़ता गया। परंतु रहती थी अकेली, क्योंकि वहां पर बेशक माँ बाप के होते हुए, परंतु जो अपनी जीवन उसने पवित्रता की चुनी थी, तो फिर अकेली ही रहती थी। सेंटर के नजदीक में ही बहुत अच्छा सहयोग देती थी हर प्रकार के कार्य में। आप ये मानो, उसने अपना इतना हर्षित चेहरा रखा, इतनी अपनी ऊंची स्थिति बनाई, विदेश में नहीं तो कोई भी सेवा करने के लिए किसको समय नहीं होता। अपने बूढ़े माँ बाप को भी वो अपना दाखिल कर देते हैं ओल्ड फोक होम, ताकि बुजुर्ग लोग उनको और लोग संभाले। इस बहन के लिए हमारे पास रोटा थी। अधिक लोग होते थे जो कहते थे हम जाकर के इसके साथ रहें, इसकी सेवा करें, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। क्यों? हम जब उसके संग होते हैं और ही हमारी खुशी बढ़ती है और ही हमारी स्थिति और अच्छी होती। दादियों ने तो 70 वर्ष अपनी तपस्या की है, इस कुमारी ने तो 15 साल की ही तपस्या की थी, तो वो कोई ज्यादा समय नहीं है। और कई लोग सोचते हैं कि हम बुजुर्ग होंगे, कौन हमारी संभाल करेगा। तो इस लड़की की जीवन कहानी ऐसी है जो अंत तक उसने सबको प्रेरणा दी, और आज तक भी कोई भी उसको याद करता तो उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई को याद करता और प्रेरणा लेता। स्थिति से परिस्थिति पर जीत कैसे प्राप्त होती, उसने प्रैक्टिकल, विदेशी बहन ने वो करके दिखाया। सेम थिंग एक भाई, उसकी आयु थोड़ी और बड़ी थी और वो युगल रूप में है, तो उसने 1 साल तक, उसको पहले तो डायग्नोसिस ठीक नहीं हो रहा था, परंतु उसको स्टमक में ही, बाउल में कैंसर था, तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, पहले तो वो परेशान होता था, फिर उसने अपना एक पक्का संकल्प किया कि मुझे और कोई बात नहीं सोचनी है, मुझे अपने योग पर ही ध्यान रखना है। नर्सेस को जो काम करना है नर्सेस करेंगे, डॉक्टर्स को जो काम करना है वो अपना काम करेंगे, मुझे अपना योग ठीक रखना है। तो अपने वाइफ के साथ, वाइफ को कहता था मुझे ड्राइव करके 4 बजे अमृत वेले बाबा भवन लेके चलो। खास कैसे भी बीमार था, लास्ट तक अमृत वेला न सिर्फ घर पे करता था परंतु बाबा के घर पे आके करता था। उसने भी अपनी सच्चाई से ऐसे सबको, दिलियों को जीता। जो 4 साल पहले की बात है, मैं मधुबन से जा रही हूँ और मधुबन से उसके लिए खास मुझे आम मिला बाबा के भोग का, और मुझे कहा गया कि उन्होंने खास रिक्वेस्ट किया था भोग लगाने के लिए, तुम इस भाई के लिए लेके जाओ। मैं सवेरे पहुंची हूँ, 12 बजे उसके पास गई हूँ, उसको वो आम का छोटा सा पीस खिलाया, 4 बजे उसका देह अंत हुआ। ऐसे चेहरा मुस्कुराते, बस बाबा की याद में अंतिम फल मधुबन का ही उसके मुख में गया। हालांकि 2-3 दिन उसने सिर्फ पानी लिया था। तो ये प्रैक्टिकल स्थिति के द्वारा परिस्थिति के ऊपर कैसे जीत प्राप्त की जाती, मैं आपने 2 विदेश भाई बहनों की कहानी सुनाई। अभी प्रश्न आता कि जैसे संसार की हालत और मुश्किल बढ़ती जाएंगी, तो उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी होंगी, धन की संकट भी आएंगे, तो उसमें बाबा ने हमें पहले से ही सेफ रखा है। बच्चे कुछ भी बात में आप ध्यान न दियो। आपको क्या चाहिए? दो रोटी का टुकड़ा और भगवान के गुणगान करना। रियलिटी में आप अपने जीवन को अभी से ही सिंपल बना करके रखेंगे तो आगे आने के समय बेशक किसके पास में हाथ में नोट होगा परंतु पाने नहीं मिलेगा। किसके हाथ में सोना चांदी होगा, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा। बाबा ने पहले से ही ये सब बातें हमें बता दी है। तो अभी से ही हम अपने लाइफ को जितना ब्राह्मण नियम अनुसार सिंपल बनाते चलते हैं उसमें आत्मा संतुष्ट अपने को रह पाती, फिर कोई प्रकार की आदत हमें नहीं खींचेंगी। आप सोचो कि जिस समय तकलीफ हो रही है, संसार में अर्थक्वेक हो रहा है, और उस समय आपको चाय का कप याद आए, आप बाबा को याद करेंगे या आपके सिर के दर्द में आप सोचेंगे कि अभी मुझे चाय का कप कहाँ से मिले, राइट? ये तो मैं चाय की बात बता रही हूँ, परंतु कोई भी बात की आदत और कोई भी बात की आशाएं, आज एक आशा होती तो उसमें 10 और बढ़ती जाती। कभी भी ये संभव ही नहीं है कि एक आशा पूरी हो और दूसरी आशा प्रकट न हो, परंतु बाबा ने हमें इतना सब कुछ दिया और ये भी गारंटी दी है कि ब्राह्मण कभी भूख नहीं मरेंगे। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करके भगवान बांदेमान है। यदि आपने नियम अनुसार भगवान को भोग लगाया है हर रोज, मैं अभी आपसे पूछूंगी, आप सब बहुत करके प्रवृत्ति में रहने वाले हो, कौन है जो अपने घर में भोग लगाता? वाह, ये तो मुझे ताली बजानी चाहिए क्योंकि ये तो 100% रिजल्ट थी। तो जिसने भगवान को भोग लगाने का नियम रखा वो सारे कल्प में भूख नहीं मरेगा। रियली तो अंत समय कुछ भी हो जाए परंतु आपने बाबा के नियम अनुसार अपने जीवन बना के रखी है, सिंप्लिसिटी जीवन में धारण की है, आशाओं को फेंक दिया है। क्यों? क्योंकि जितना बाबा ने हमें बिल्कुल संपन्न बना लिया है हर प्रकार के खजाने से, हमें इन बातों के पीछे क्या चाहिए? जैसे कल दादी जी बता रही थी, बस छोटी सी इतनी तो चीज होनी चाहिए ना, या ये तो जरूर चाहिए ना? नहीं, बच्चे को सोचना नहीं होता कि ये चाहिए या वो चाहिए। माँ बाप उसके लिए पहले से ही इंतजाम करके रखती हैं कि इन्हों को ये जरूरत पड़ेगी, तो माँ बाप पहले से ही तैयारी करके रखती हैं। तो आप सोचो कि माता पिता किस तरह से हम लोगों के लिए तैयारी करके रखता, उसमें हमको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। परंतु स्थिति हो तो फिर उस परिस्थिति में हम उस बात को पार करें। मैं आपको एक भारत की कहानी इसमें बताने चाहेंगी। कुछ अपने बाबा के पुराने बच्चे भी बैठे हैं, शायद उस आत्मा को जानते भी होंगे, परंतु मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लगती है। ये एक माता थी जिसका नाम था गंगा मैया, गंगा माता। तो ये 1957 की कहानी है। हमारी लौकिक ग्रैंडमदर और मदर ज्ञान में आए थे और मैं भी बचपन में 8 वर्ष की उम्र में दादी के पास वैसे ही चक्कर लगाने जाती थी और बर्थडे वहां ही मनाते थे, जैसे आज कभी बच्चों का होता, बच्चों का क्लास भी चलता था। तो उस समय तो मुझे कोई इतनी उसकी कहानी की जानकारी नहीं थी, परंतु बाद में जब हम भारत में लौटते गए, फिर हम विदेश में आ गए, फिर हम भारत में वापस लौटते गए, तो मुझे उस माता की कहानी का पता चला। तो ये गंगा मैया थी इलिटरेट, پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور بہت چھوٹی آیو میں 3 بچے اور پتی نے شری چھوڑا اور 1957 میں آپ سوچو کہ آج کل بھی بہت کلنک لگتا ہے ویڈیو کے اوپر پرنتو ان دنوں میں تو کوئی ایجوکیشن نہیں کوئی جاب نہیں کچھ بھی نہیں پرنتو تب تک اس نے ایک ورش تک گیان لیا تھا اور اس ایک ورش کے گیان میں اس کو اتنی انٹرسٹنگ باتیں سمجھ میں آ گئی تھی جس میں خاص کرم فلسفی اس نے اس بات کو سمجھ کر کے دل سے سویکار کیا تھا کہ میں اپنا کرم کر کر کے کھائیں گی تو بھگوان کی مدد مجھے ملیں گی میں اپنے سسر گھر والوں سے لے کر کے کھائیں گی تو میں غلام بن کر کے رہیں گی اتنی گہرائی سے اس نے اس بات پر الٹریٹ پرنتو دماغ تو دیویا بدھی بھگوان نے دی تھی تو وہ سمجھ میں تھا تو وہ ایک ہی بات جانتی تھی ماتائیں ان دنوں میں کیا جانتے تھے کھانا پکانا تو وہ کیا کرتی تھی کہ کچھ چیزیں بنا کر کے 3 چھوٹے بچوں کو راستے پر بٹھا لیتی تھی اور وہ بکری کرتے تھے وہ چیزیں پھر جو پیسہ آتا تھا اس میں سے اور خریداری کر کے پھر اور بنا کے بکری کرتی تھی اس میں سے اپنی 3 بچوں کی پالنا کی اسکول بھیجا جب تک کہ پہلا بچہ 14 ورش کا تھا پھر اس نے اپنی جاب شروع کی پھر اس سے مدد ملی پرنتو کہنے کا مطلب کہ کسی منش کا آدھار نہیں رکھا ایک بھگوان کا سہارا کرم فلسفی اور اپنی ہمت اور وشواس اس آدھار پر اس نے اپنا جیون ایسے بنایا اور بچوں کو ایسی شکشا دی جو وہ بڑے ہو کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے رہے اور اس کا دیہ انت کیسے ہوا کلاس چل رہا ہے یہ پونا کی کہانی ہے کئی اس کو جانتے ہوں گے یہاں کلاس چل رہی ہے اور کلاس میں بھی اسٹوڈنٹ اور لوگ تو کہیں گے چلو ابھی ہم نوٹس لے لیں بعد میں ہم نوٹس پڑھ لیں گے پرنتو اس ماتا کو تو تھا کہ بعد میں کیوں نہ میں پڑھ سکیں گی نہ میں لکھ سکیں گی تو اپنے اس کاغذ کو اتنا اس نے صاف رکھا جو جس سمے مرلی ریویژن ہوتی تھی وہ پورا ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ سارا ہی بتا سکتی تھی کہ آج بابا نے کیا کہا اتنا وہ دھیان سے سنتی تھی اور اس کاغذ کو اتنا صاف رکھتی تھی لاسٹ میں یاد پیار نمستے اوم شانتی اور بس آتما چل پڑی گیان گنگا کانوں میں ہو اور مکھ پر امرت ہو اور دیہ کا تیاگ ہو پرماتما کی سمرتی ہو تو اس آتما کی گتی ستگتی تو آپ سوچو کہ یہ میں نے دیکھی ہوئی کہانیاں ہے پریکٹیکل تو آج یدی مجھے کوئی کہتا ہے کہ بہن جی یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے مجھے معلوم ہے کہ جس کو بابا کے لیے پیار ہے جس کو گیان رتنوں کا خزانے کا قدر ہے جس کو کرم فلسفی کی گہرائی سے جانکاری ہے وہ ضرور اپنی پرستھتی کو بھی ٹھیک کر سکیں گے باقی اپنے میٹیریلسٹک ڈیزائرز کو رکھتے رہیں گے پھر کہیں گے بچوں کی شادی کرانی ہے بچوں کو جولری دینی ہے پھر تو بھگوان بھی کہیں گا وہ جانے وہ اس کی گت مت جانے پرنتو یدی بابا کی آگیا انوسار وہ اپنی جیون چلاتے تو پریکٹیکل میں نے دیکھا ہوا ہے کیسے انہوں کا انت سمے انت متے سگتے ہو جاتی اور اس کی ایک اور بات داری ہمیشہ کہانی سناتی اس کے پاس اتنا سا سونا تھا بس میری انگلی ناخن جتنا بھی اتنا ہوں گا اور ان دنوں میں ہسٹری ہال بنتا تھا तो उसने वो छोटा सा सोने का टुकड़ा दादी को दिया कि बाबा को जाकर के ये देना कि इससे मेरी एक ईंट लगे हिस्ट्री हॉल में। वो जब सोना बिक्री किया उन दिनों में उसका मिला 8 रुपया। जब दादी ने आकर के बाबा को कहानी सुनाई, आप सोचो भोलानाथ बाबा ने कितने प्रेम से उस आत्मा को प्यार और सकाश दिया होगा। और बाबा ने यही कहा कि इसकी ईंट से उसके तो महल तैयार हो गए। जिस समय भक्तों के ऊपर भीड़ होती भगवान मदद करता, परंतु जिस समय भगवान के कार्य में मदद की जरूरत होती और बाबा के बच्चे मदद करते हैं तो आप सोचो भगवान कितना न उसमें संतुष्ट होकर के छप्पर फार के उनों को सब कुछ देता होगा। तब बाबा कहते हैं कि बच्चे आप मेरे राइट हैंड बनो, मेरे मददगार बनो, जो कुछ करना है अभी है समय सफल करने का, अभी है समय मदद करने का। आप सोचेंगे कि अंत किसने देखा, कब पता चलेगा, तो देख लेंगे, तो उस समय क्या मालूम क्या होगा। परंतु भक्तों के ऊपर भीड़ के समय भगवान ने मदद की, परंतु भगवान को जिस समय मदद चाहिए भक्तों ने अथवा बच्चों ने मदद की, तो आप सोचो कितना बड़ा भाग्य की निशानी है। फिर बात आती है संबंध की, धन की बातें बताई, धन की बातें बताई, संबंध की बातें बताई, अभी बताने वाली हूं। संबंध में आप सोचो कि आज किसी के साथ हमारा ठीक संबंध नहीं है, और ये भी मैंने देखा है कि जो बाहर वाले होते हैं उनके साथ ऊपर ऊपर के साथ संबंध रखना तो सहज है, 2 घंटे 4 घंटे मास में एक बारी मुलाकात होती, ब्राह्मणों के साथ तो हर रोज लेन देन होती, क्लास के स्टूडेंट के रूप में चाहे सेवा के साथी के मददगार के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से। और जो बाहर वाले हैं एक जन्म का हिसाब है, आधा जन्म का हिसाब है, क्या मालूम, परंतु ब्राह्मणों के साथ तो सारे चक्कर का हिसाब है, उसमें भी कोई आधा कलप तो कुछ हिसाब किताब नहीं बना, परंतु संबंध तो बना रखा। परंतु जो ये आधा कलप बीता उसमें कितना हिसाब किताब हम लोगों ने बना के रखा होगा, हम कभी भी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जरूरत भी नहीं है कि हम बैठ करके हिसाब लगाएं कि किसके साथ मैंने कितना हिसाब बना के रखा है। परंतु अभी यदि जैसे हमारी दादी जी, जैसे अपनी और एडवांस पार्टी की दादियां, अपने बड़े बुजुर्ग दादाएं, उन्होंने एक संकल्प रखा कि हमें कर्मातीत होकर के जाना है, जिसके साथ भी जो कुछ हिसाब किताब बीत चुका अब हमें उस हिसाब किताब को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें उस हिसाब किताब को चुकतू करना है। यदि एक ये अपना संकल्प रखा तो आप सोचो कि मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति हमारी किस प्रकार से होंगी, उसमें कभी भी फिर ये नहीं हम सोचेंगे कि उसने ये किया तो मुझे ये करना है, वो बनता ही नहीं है हिसाब। क्यों? क्योंकि उसने किया मैंने किया वो तो पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब चलता रहा है और अभी भी चलता रहेगा, तो मेरी गति क्या होंगी। परंतु अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने को निर्लेप बनाना है, मुझे अपने हिसाब किताब को चुकतू करना है। तो यदि एक ये हम संकल्प रखते हैं कि हमें कर्मातीत बनना है, और वो भी यदि हम सोचते हैं कि पता नहीं विनाश को 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, पता नहीं क्या टाइम लगेगा, पीछे हम कर्मातीत होकर के चलेंगे, तो अपना हिसाब किताब वो ऐड होता जाएगा, कभी भी वो फिनिश होने वाला नहीं होगा। परंतु जिस घड़ी हमने सोचा कि अब से मुझे हिसाब किताब और जोड़ना नहीं है, जितना भी मुझे करना है, शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, शुभ भावना, वो मैं पुण्य कर्म का खाता अपना बढ़ाती चलूं, परंतु हिसाब किताब कहां पर मैं बनाऊं नहीं। और हिसाब किताब में एक और बहुत गहरी बात बाबा ने बताई है। उसमें बाबा ने ये खास बताया कि एक तो है कर्मों का लेन देन, वो तो हिसाब किताब है ही। दूसरा फिर है वार्तालाप, मेरे वचन ऐसे होंगे जो आपको दुख मिला, या आप ना उम्मीद हो गए, या आप निराश हो गए, तो वो उसका बोझ किसके ऊपर चढ़ा? खुद के ऊपर। तो वाचा से भी हिसाब किताब बनता, कर्मना से भी हिसाब किताब बनता। परंतु सबसे सूक्ष्म ये भी बात सही है, मनसा वृत्ति से भी हिसाब किताब बनता। पॉजिटिव आप सोचो, बाबा कहते हैं शुभ भावना रखो, शुभ भावना भी एक पुण्य कर्म का खाता आपका बनता। किसी के प्रति भी आप शुभ भावना रखते चलो, आपका पुण्य का खाता जमा होता रहेगा, और आगे हाँ वो आत्मा नजदीक आकर के मददगार बन पाएंगे। और यदि कर्म फिलॉसफी में हम पॉजिटिव बात को उठाते हैं और उस बात को स्वीकार करते हैं, तो दूसरे तरफ की बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि यदि हमने किसी के प्रति अशुभ भावना रखी, श्रेष्ठ संकल्प न रख करके कुछ और संकल्प रखे, तो उसका भी हिसाब किताब हमारा बन गया। मुझे याद आता कि एक बहन के लिए बीच में कुछ कहानी चली थी, तो दादी के साथ दो तीन बहनें बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा दादी ये बहन तो सच्चा नहीं बोल रही है, ये तो हमारे पास सबूत है उसका। तो दादी ने उन्हों को कहा आप लोग ये सोचेंगे तो उस आत्मा की गति क्या होंगी, राइट रॉन्ग मैं नहीं सोचती हूं। अच्छा चलो आप जो कह रहे हैं राइट भी है, उसने झूठ बोला भी हो, परंतु आप लोग ये दृष्टि वृत्ति रखेंगे कि ये झूठी है, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा और ही वो आत्मा नीचे आ जाएंगी, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। आपने उस आत्मा को सहयोग नहीं दिया, मदद नहीं की, और ही उस आत्मा को गिराने के निमित्त बने। सही बात क्या है भगवान जाने, आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि आपने ये भावना रखी कि ये भी हमारी बहन है, हाँ 10 गुण है, एक अवगुण है, ठीक है ये अवगुण है, परंतु 10 गुण तो है, तो यदि आपने उसको प्रेम से सपोर्ट दिया, उसको और उमंग उत्साह हिम्मत दिलाई, तो उसका और पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा, और उसमें वो शक्ति आएंगी जो वो खुद रियलाइज करके वो चेंज हो सकती। तो संबंध में हम कहां तक एक दूसरे के सहयोगी है, अपनी ही स्थिति द्वारा हम परिस्थिति को बदल रहे हैं, या वो परिस्थिति को देख करके हम उस बात में अटक करके और अपना हिसाब किताब जोड़ते जा रहे हैं। लास्ट बात जो कहनी है, बाबा जो हमें कुछ समय से लेकर, न सिर्फ आज परंतु कुछ वर्षों से लेकर, बाबा हमें एक बात की विशेष शिक्षा देते रहे हैं, बच्चे आपकी मनसा शक्ति ऐसे पावरफुल हो जो विश्व को शांति का दान मिले। यदि परिस्थिति के कारण मेरा मन अशांत हो गया तो हमने कुछ बाबा के कार्य में सहयोग नहीं दिया, परंतु परिस्थिति कैसे भी हो, परंतु स्व स्थिति में आता है अपना स्वधर्म, शांति, पवित्रता, प्रेम, सत्यता, सुख। ये जो आत्मा के ओरिजिनल निज गुण है, जितना जितना हम योग में इस बात का अभ्यास करती हैं, योग किसको कहते हैं, हम अपने रियलिटी, उस स्थिति को याद कर रही हैं, इमर्ज कर रही हैं, न सिर्फ 5 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लिए, परंतु वो रियलिटी जो है हमारे आत्मा के आदि स्वरूप की, उस स्थिति को हम कायम रख करके फिर जो कुछ हमें यहां आकर के कार्य करना है, हम वो कार्य उस रियलिटी के आधार से करें। कठिन बात ये हो जाती है कि हम समझते हैं कि यहां जो कुछ हो रहा है वो रियलिटी है, और बाबा ने बता दिया कि जो आप तीसरे नेत्र से देख रहे हो वो है सत्यता, वो है रियलिटी, ये तो है भ्रम, ये है इल्यूजन, क्योंकि बातें बदलती रहती है और पता नहीं चलता कि सही बात क्या है। तो आप अपने तीसरे नेत्र से देखो कि रियलिटी क्या है, आत्मा की स्थिति उस रियलिटी में स्थित रखो जो अपनी ओरिजिनल संस्कार है, ओरिजिनल भगवान के बच्चों के गुण है, उस अनुसार फिर यहां की परिस्थिति भी डेफिनेटली ही चेंज हो जाएंगे। तो स्थिति द्वारा ही नया संसार आएगा, स्थिति द्वारा ही पुरानी वृत्तियां समाप्त होंगी, स्थिति द्वारा ही हम बाबा की प्रत्यक्षता कर पाएंगे, स्थिति द्वारा ही हम स्वर्ग में चल सकेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कृपया सभी से नम्र निवेदन है, 3 मिनट बाबा की याद के बाद ही उठे, अपना शिस्त बनाए रखे। भट्टी की शोभा आप सभी की उपस्थिति है। एक है ज्ञान सुनाना, दूसरा है ज्ञान को स्मृति में रखना, और तीसरा है ज्ञान स्वरूप में लाना। हमारे सामने यज्ञ की एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिसने ज्ञान को स्वरूप में लाया है। हम सभी ऐसी विशेष प्रतिभा आदरणीय राजयोगिनी जयंती बहन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, अंतःकरण से अभिनंदन देते हैं कि बहुत सुंदर क्लास अपने जीवन के अनुभवों से, अंतःकरण के उद्गार से कराया, फिर आपका धन्यवाद है। अभी हम सब बाबा की याद में 3 मिनट के लिए बैठेंगे, उसके बाद भी कोई नहीं उठेंगे। आपको यहां से जो डायरेक्शंस मिले आप उसको पूरा सुनेंगे, और सुनने के बाद ही अपने स्थान से प्रस्थान करेंगे।
पथ पर सेवा डगर पर प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा तारों सा हंसना फूलों सा खिलना तारों सा हंसना फूलों सा खिलना जीना सिखाते बाबा चाल फरिश्तों जैसी हो जो काल विशेष नवाए हर हाल में यूं खुशहाल रहो जो जग निहाल हो जाए और चाल फरिश्तों